संतप्त मानस शांत हो, जिनकी गुणों की ध्वनि वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। 18 गाथाएं प्रवचन सार की समाप्त हो गई। उसके बाद पेज नंबर 28 पर एक गाथा ऐसी है जो आचार्य अमृतचंद्र की टीका में नहीं है और आचार्य जयसेन की टीका में उपलब्ध होती है। वो गाथा 19वीं गाथा के पहले आपके समय इसमें मिल जाएगी। तम सब वरिष्ठम गाथा ऐसी दिखाई दे रही है कि एक बीच में यहाँ नहीं भी होती तो भी उस प्रकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता। एक शेर बात चल रही थी सिद्धोप योग के प्रभाव से अनंत ज्ञान और अनंत सुख होता है और उनका स्वरूप क्या है वो बात की चर्चा चल रही थी, पर बीच में ही वो कहते हैं कि जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, मैंने सिद्ध भगवान को नमस्कार करने जैसी, उन्हें याद करने जैसी गाथा बीच में आई है, जिसे हम मध्य मंगलाचरण भी कह सकते हैं। उसमें आता है ना, आदव मध्य बसाने च मंगलम भासतम बुधई। मंगलाचरण कब करना चाहिए, कब कब होता है, ऐसा प्रश्न किया किसी ने, क्योंकि नियमसार में और भी अनेक ग्रंथों में बीच बीच में मंगलाचरण आ जाते हैं और समयसार जैसे ग्रंथ में पूरे 415 गाथाओं में बस एक गाथा में मंगलाचरण किया, वो भी एक गाथा की एक पंक्ति में। फिर अधिकार बदलते गए लेकिन अधिकार के आरंभ में कोई मंगलाचरण देखने में नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य ने अधिकारों में समयसार प्रवचनसार लिखे ही नहीं, वो तो अपने उनके दिमाग में एक बात उन्हें कहनी थी तो एक क्रम से कहते गए और 415 गाथाएं समय सार में और 200 कितनी जो भी गाथाएं हैं वो प्रवचन सार में उन्हें पूरी कर दी। मतलब बीच में कहीं मंगलाचरण नहीं किया और अंत में भी मिलेगा तो वो आशीर्वाद मंगलाचरण मिलेगा, फिर कोई भगवान को नमस्कार किया हो ऐसा मंगलाचरण नहीं है। अब ये बीच में आ गया, क्या क्या लिखा देखो, जो सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ हैं और देवेंद्र असुरेंद्रों को के इष्ट हैं, उन सिद्ध भगवान की श्रद्धा जो जीव करते हैं उनके सभी दुखों का क्षय हो जाता है। अब किनके सभी दुखों का क्षय हो जाता है ये बात बीच में अभी कहां आ गई थी, शुद्ध के स्वरूप समझा रहे हैं और शुद्धोपयोग का फल बता ही रहे ना। शुद्धोपयोग के फल में अनंत आनंद और अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अनंत आनंद और अनंत सुख वो आ रहा है। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये गाथाएं क्षेपक हैं। क्षेपक माने बाद में किसी ने जोड़ दी हैं। जैसे आचार्य स्वयं बहुत भावुक प्रकृति के आचार्य हैं, जैसे पद्मा परमलधारी देव हैं थे ना, ऐसे ही जयसेन भी हैं कि वे उस टीका करते समय कभी भी उनके मन में आ जाए तो न, न, मंगलाचरण नमस्कार करने लग जाए। ये नेमिनाथ भगवान का चित्रालय है, उसमें बैठे होंगे, वो लिख रहे थे मान लो समय सार, तो नेमिनाथ भगवान के भक्ति में एक गाथा लिख दी। ऐसा बार बार होता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि पहले बता दो मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहते हैं। हम तो ऐसा सुनते हैं कि शुरू में जब कोई काम करते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कहा आदौ मध्य वसाने च मंगलम भासतम बुधई। बुद्धिमान जीवों ने ऐसा कहा है कि मंगलाचरण आदि में तो होता ही है और मध्य में और अंत में भी किया जा सकता है। कहने हैं तो ये ऐसा मध्य मंगलाचरण जैसा है। क्या होता है कि जो सिद्ध के श्रद्धालु हैं और जो सुरेंद्र और असुरेंद्रों से पूजनीक हैं, अब पहले ही मंगलाचरण में कह चुके हैं ना, सुरेंद्र असुरेंद्र चक्रवर्ती, इन तीनों से जो पूज्य हैं, है ना, ये बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन फिर भी द्वारा उन्होंने ये बात कह दी। अपन ने इस टीका में वो सब गाथाएं भी दी हैं जो दूसरा प्रवचन सार की टीका है ना पुरानी छपी है, उसमें ये गाथा नहीं मिलेगी आपको। और यदि अपन अमृतचंद्राचार्य की तत्व प्रदीप का टीका कोई मुख्य मान के बात करते हैं तो अपने में भी नहीं होती। अपन तो पूरे प्रवचन सार को समग्र को देखना चाहते हैं। तो एक बात और बताता हूं, आप लोग अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी कि पांडे कौन, पांडे हेमराज जी, वो पांडे राजमल जी का भ्रम हो जाता ना, पांडे हेमराज जी ने जितना जितना अर्थ लिखा है, वो वृंदावन कवि ने जितने छंद लिखे हैं तो वो उन छंदों में भी और पांडे हेमराज जी की टीका में भी जो जितने भावार्थ लिखे हैं वो लगभग वो जयसेन की टीका में जो बातें हैं और अम्बेचंद की टीका में नहीं थी वो चीज लिखी है। समय सार की टीका में पंडित जयचंद जी छाबड़ा पर पूज्य गुरुदेव श्री बहुत रीझते थे इस अर्थ में कि उनके भावार्थ गजब के हैं, है ना? लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने भी ये रीति अपनाई थी क्या, कि वो जो जयसेन की टीका में थे जो भावार्थ लिखे वो जो विषय वस्तु जो जयसेन की टीका में थी वहां से ली हुई है। कभी कभी अपन को आश्चर्य भी होता है कि वो इतनी महान बात कह जाते हैं बीच में तो जयचंद जी की जो हैसियत की बात नहीं थी, ऐसे कोई बात नहीं कि जयचंद जी की हैसियत कोई कमजोर थी, लेकिन वे खुद ही कहते हैं कि मैं तो टीका कर सकता हूं, मैं कोई मूल बात नहीं लिख सकता, वो तो जो पहले से उपलब्ध है शास्त्रों में वो बता सकते। तो अपने मन से टोलो मल जी ऐसा सोच के और नया विषय वस्तु प्रस्तुत कर सकें ऐसी क्षमता वो अनुभव नहीं करते थे, फिर भी ये कहां से आया। तो जब गहराई से देखा तो ये इस बात का हमको पता कब चला, पहले प्रवचन सार अकेली वो तत्व प्रदीपिका टीका के साथ छपता था और वो जयसेन की टीका कहीं उपलब्ध नहीं होती थी, और अलग से कोई शास्त्र अपने साथ में हम रखते नहीं थे, गद्दी पे स्वाध्याय करते वक्त वो टीका कहीं से छपी हो तो हमने जयसेन की टीका उसमें डाली, रतन सार ने वो जयपुर से छपाया। कब, سن 70-71 میں. اس وقت جو میں نے ناٹک سمے سار تروچن سار ان شاستروں کو جے پور سے چھاپا تھا تو اس میں جو سمپادن کیا تھا اس میں پروچن سار میں خاص کر ٹیکا جوڑی تھی پرموکش میں پرکاشک ان کا سمپادن میں نے اس وقت کیا. اس وقت جیسا رواج نہیں تھا کہ پھر وہ اپنے سمپادک اس میں اپنا نام لکھ دے, یہ کر دے, وہ کر دے, وہ تو اس میں مل جائے گا آپ کو پرکاش کی میں پاٹنی جی کے میں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں کیا. تو اس میں یہ بھی بہت دقت ہوتی تھی وہ جوڑنا, اسے بیچ بیچ میں اتنا حصہ اس میں اس کا ٹیکا کا جوڑنا اور اس کا ارتھ نہیں لکھا, کیونکہ اب ارتھ لکھے تو جے جے چند کا ہے, جے آتم خیاتی کا ہے اور جے پنڈت اس کا ہے کہنا جیسے نا ترگی تات پریوتی کا, یہ کرنا سمبھو نہیں تھا. پھر بعد میں یہ کام میں نے کئی دفعہ کہا اپنے پروچنوں میں, جیسے ابھی کہہ رہا ہوں, اتم چند جی نے اپنے ماتھے پہ لیا اور انہوں نے جو سمے سار پروچن سار پرکاشت کیے کن کن کہان تشت سے, اس میں وہ جیسین کی ٹیکا کا ارتھ بھی لکھا اور وہ تت پردیپ کا ارتھ بھی لکھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا ارتھ جانتے نہیں تھے, کر نہیں سکتے تھے اور وہ کر سکتے تھے اس لیے کیے, ایسا تو ہے نہیں. کیونکہ اس وقت بھی اپنے جے پور سے ہی جیسین کی ٹیکا بھی چھپی تھی, اور جگہ سے بھی چھپی تھی لیکن وہ الگ چھپی تھی. تو پہلے اپنے آفس میں یہی کہتے تھے, یہاں تک کہ وہ نیمی چند بھی اس کو بھید کو جانتا تھا کہ بھائی پروچن سال لانا تو جیسے ان کا لاؤں کہ امرچند کا, ایسا بھید وگیان اس کو بھی ہو گیا تھا. تو کبھی کبھی کہتے تھے کہ بھائی ایک منڈن مشر نام کا ودوان تھا, اس کے گھر میں نرنتر ویدوں کی چرچا ہوا کرتی تھی. میمانسک تھا, پورن میمانسا, ویدوں کی میمانسا کرنے والا ہے نا. تو شنکراچاریہ کے سمے کی بات ہے, 1000 پرانی بات ہے, کوئی سمجھ لو امر چند کے سمے کی بات ہے. تو اتنی چرچا ہوتی تھی کہ کوئی آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ منڈن مشر کا گھر کہاں ہے. منڈن مشر نام کا ایک ودوان تھا جس نے شنکراچاریہ سے بال بات کیا تھا. بات بہت آگے ہے کہ وہ ہار گیا تھا شنکراچاریہ سے, تو اس کی پتنی سامنے آئی اور اس نے کہا کہ جب تک تم مجھے نہیں جیت لو گے تب تک تم نے منڈن مشر کو جیت لیا ایسا نہیں مانا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارتی سنسکرتی میں پتی پتنی مل کر ایک اکائی ہوتے ہیں, ون یونٹ ہوتے ہیں. منڈن مشر کے لیے اے منڈن مشر نہیں ہے, میں بھی منڈن مشر کی پتنی ہونے کے ناطے میں بھی مشر ہوں. سمجھے نا, ہوتا ہے پتی کے نام سے سامنے, اس لیے آپ کو مجھے بھی جیتنا پڑے گا. ان کے یہاں لکھی ہے یہ بات, سنی ہوگی نا. تو پھر جب ٹھیک ہے تم سے بات بات کریں, تو اس نے کام شاستر پر بات بات کیا. کام شاستر کے جو انوبھوی نہیں تھے کیونکہ یہ برہمچاری تھے, تو یہ منڈن مشر کی پتنی سے ہار گئے. کون؟ شنکراچاریہ. اب میں دو لائن پہ چلوں گا کہ ایک تو پھر منڈن مشر کی بات کیا کہ مطلب منڈن مشر کی پتنی بھی اتنی ودوان تھی, ایک تو یہ بات سدھ ہوتی ہے کہ جسے شنکراچاریہ کو ہرایا تھا تو وہ راہگیر آیا تھا نا, وہ راہگیر پوچھتے کہ منڈن مشر کا گھر کون ہے, تو اس نے بتایا کہ جہاں طوطا اور مینا آپس میں ایسی چرچا کر رہے ہوں کہ ستہ پرمانا پرت اپرمانا, کہ جان کی اتپتی ستہ ہوتی ہے کہ پرتا ہوتی ہے, کیا اس کا نرنے ہو رہا ہو उसमें बहुत विवाद चलता था कि ज्ञान में प्रमाणिकता स्वतः आती है कि परता आती है। अब आप भी समझ में बुझाते हैं ये क्या स्वतः पड़ता है। अब उलझते ही जाता हूं मैं कि देखो एक होता ना कि भाई मैंने ऐसा कहा तो इस विद्यार्थी ने ये जवाब दिया, अब आपको भरोसा नहीं होता उस विद्यार्थी पे, तो आप आकर के उनके गुरु जी से पूछते हैं कि शांति जी से पूछो कि भाई इनने ये जवाब दिया ठीक है, यदि वो कह रहे हाँ ठीक है तो अपन को विश्वास हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि वो परता प्रमाणित हुआ, यानी उसकी बात में स्वतः प्रमाणिकता नहीं आई, जब गुरु जी ने छाप लगाई तब वो प्रमाणिक हुआ। वो ज्ञान की उत्पत्ति स्वतः होती है कि परता होती है, निमित्त से होती है कि उपादान से होती है, वो ही सारे सब्जेक्ट हैं। तो वो विषय बहुत चलते थे, जैसे भाई आजकल कहे निमित्त से काम होता है कि उपादान से होता है, कि जिसके घर के तोता और मैना प्रमाण की चर्चा स्वतः परता के संदर्भ में कर रहे हों वो समझ लेना कि ये मंडन मिश्र का घर है। माने विद्वानों के घर कैसे होना चाहिए उसका एक वो आदर्श है कि निरंतर 24 घंटे वहां तत्व ज्ञान की चर्चा होना चाहिए। जब सोनगढ़ में सबसे पहले पंडित कैलाशन जी गए और उनने वहां देखा तो उनने ये कहा था कि जहां रिक्शे वाले और तांगे वाले भी आत्मा के निमित्त उपादान की चर्चा करते हो समझ लेना वो कांजी स्वामी का सोनगढ़ है। ये सच्ची बात थी। माने उनके संगति में रहने वाले नौकर चाकर भी और जो फोर्थ क्लास कर्मचारी भी सातों जात के लोग भी इस तरह की चर्चा करते थे। एक लेन तो इधर खत्म हुई और दूसरी कौन कि वो मंडन मिश्र इतना विद्वान था, वो था वेदांत, मैंने वो था कौन मीमांसक, वेदों का मानने वाला था और शंकराचार्य से वेदांती, वेदों को मानने वाला और वेदांती में क्या अंतर है ये भी समझना पड़ेगा। बहुत लड़के तो जानते होंगे लेकिन बहुत जानते भी नहीं होंगे और आप बाकी के लोग भी हैं। चार तो थे वेद, इन वेदों में खास ज्यादा कुछ नहीं है। एक सरता नाम की जो पत्रिका निकलती है उसने सारे वेद उस पत्रिका में छापा के उनमें क्या क्या लिखा है, और उसने भक्ति श्रद्धा से नहीं छापा बल्कि वेदों की मजाक उड़ाने के लिए छापा। इसमें है क्या मान? बस हे सूर्य देवता तुम हमारे घर को धन धान से पूर्ण कर दो, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखो, हमारे बच्चों की तबीयत ठीक रहे, हमारे खेती बाड़ी बढ़िया हो गए, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। वो सब निकाल निकाल के बताया फला वेद में ये है, फला वेद में ये है, ऐसा। तो वो उसके दो भेद हो गए, पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। मैंने पहले उन पर विचार विमर्श हुआ वेदों पर, तो उससे जो विद्वान निकले वो एक मत निकला उसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और उसके बाद में कुछ विद्वान निकले उन्होंने कहा कि इसका ये अर्थ नहीं है उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। मैंने समय सार पर मान लो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन किसी बहुत विद्वानों ने टीकाएं लिखी हों, ये किया हो, सब किया हो, लेकिन उसमें सब अर्थ वैसे क्रियाकांड के पोषक और वैसा ही हो, फिर उसके बाद में मान लो कांजी स्वामी ने उस पर अर्थ किए तो एक पूर्व मीमांसा कहलाई और एक उत्तर मीमांसा कहलाई, और वेदों के बाद में जो कुछ लिखा गया उसे वेदांत, वेदों के अंत में लिखा गया, जैसे कि ये गीता, गीता के वेदांत का शास्त्र है जो व्यास ने लिखा, वेद नारायण व्यास है ना, महाभारत लिखा ना, और उसका एक अंश गीता है। तो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, अग्नि से जलता नहीं, जलता नहीं, ये सब बातें वेदांत में आई। तो वो जो है पूर्व मीमांसक विद्वान था मंडन मिश्र, तो शंकराचार्य वेदांती थे, इसलिए उनको जगह जगह जाने के लिए हर जगह वाद विवाद करना पड़ता था, और जब वो जीत जाते थे तब वो उस मीमांसा मत को कम कर पाए और वेदांत का प्रचार कर पाए। बस ऐसा समझ लो कि जो ये पहले सारे देश में क्रियाकांड फैला हुआ था ना, फिर कांजी स्वामी हुए और उन्होंने उस क्रियाकांड का विरोध किया, समझे? क्रियाकांड माने वही पूर्व मीमांसा का वाला प्रकरण, जहां पर ये यज्ञ करो, होम करो, ये करो, वो करो, फिर भाई ऐसा करो, ऐसा करो, और उसमें ही बस होम होम डालते जाते हैं स्वाहा, और तुम हमारी तबीयत ठीक कर दो, तुम हमारा मैं मांगे ही मांगे, सारे सूत्र मांगे ही मांगों की है, बस कदम वही छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे जैसा, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो भगवान। तो ये ऐसी ऐसा ही इतिहास ऊपर से देखें धारा में तो जैन धर्म में भी आता है। तो जब तक उस धाराओं को अच्छी तरह से नहीं पढ़े उस इतिहास को साथ में, तो ये दर्शन समझ में नहीं आ जाता। तुम्हारे यहां तो सर दर्शन कोर्स में है ना किताब, उसमें ये सब बातें आई होंगी, पढ़ाई जाती क्यों शांति जी, पढ़ाई जाती कि नहीं? बलदेव उपाध्याय की है ना किताब, आजकल लोग पढ़ते ही नहीं है, जो तो नहीं पढ़े पास होते हैं। तो जयसेनाचार्य ने टीका लिखी, मतलब पहले उन्होंने लिखी अमृतचंद्र ने, तो उसमें एक बीच में ऐसी इसमें एक गाथा थी नहीं, और जब जयसेन ने लिखी तो उनको बीच में आई, तो एक उन्होंने एक गाथा बना के उसमें जोड़ दी। पर गाथा तो कुंद कुंद की है ना, उनके में मिलती है और इनके में नहीं मिलती है, तो ऐसा क्यों हो? तो दो कारण हो सकते हैं कि या तो वो थी तो अमृतचंद्र ने उसको ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने इस गाथा को माना नहीं कि ये कुंद कुंद की है, छेपक मान के उसे छोड़ दी, या ये हो सकता है कि अत्यंत सरल है इसलिए उसका अर्थ लिखने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। तो मेरे को मारतन तो अपने कोर्स में है नहीं ना, कहीं पढ़ाते नहीं ना, उसमें ऐसा बहुत आता है, हमने पढ़ा था वो एतत् सुगमम, ये तो बहुत सरल है, तो उनने उसका अर्थ ही नहीं लिखा। मैंने बहुत प्रकरणों को उनने नीचे सिर्फ इतनी टीका लिखी, क्या एतत् सुगमम कि ये बहुत सरल है, तो अमृतचंद्र को ऐसा लगा हो कि ये तो बहुत सरल है, तो उनने तो एतत् सुगमम लिखकर कर दिया, तो हमारी समझ में आ गया कि नहीं, और इनने उसकी टीका नहीं लिखी, तो जो अमृतचंद्र के भगत थे उनने अगली जो प्रति बनवाई तो आत्मख्याति की बनवाई, तो उसमें उपाध्याय की टीका नहीं थी, तो उसने लेखक ने लेखक माने लिपिकार उसने वो गाथा ही छोड़ दी। इतनी कहानी में आपसे क्यों कह रहा हूं कि वे गाथाएं इसमें हैं और उसमें नहीं है, कैसे निर्णय करें कि असली प्रवचनसार कौन है, वो 35 गाथाओं सहित है कि वो 35 गाथाएं नहीं है, ऐसा है। आगे बहुत चल करके श्वेतांबर मत के खंडन की 17-18 गाथाएं हैं जो जैसेन में है और अमृतचंद्र में नहीं है। इसके लिए आज के बहुत बड़े आचार्य ने अमृतचंद्र पर ये आरोप लगाया था कि अमृतचंद्र को श्वेतांबरों का मत का खंडन करना इष्ट नहीं था, इसलिए उनने वो गाथाएं इसमें से छोड़ दी। समझे ना, आरोप समझ में आया कि नहीं सोगानी जी? और अमृतचंद्र काष्ठा संगी है, चली थी चर्चा वो जो हम लोग पढ़ते थे तब, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई है क्योंकि लोग अमृतचंद्र को श्वेतांबरत्व का के पक्ष में आरोप लगाए हैं, ऐसा किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे आप लोग हैं, मैं आपके साथ रहता हूं 47 साल से, और अब मैं सीतामढ़ी में भी जाता हूं, वहां भी प्रवचन करके आता हूं, लेकिन यही तत्व की बात कहता हूं। सीतामढ़ियों के मत की पुष्टि की तो कोई बात कहता नहीं मैं, कि वो धर्म सच्चा है दिगंबर सच्चा नहीं, ऐसा तो नहीं कहता हूं। लेकिन सीतामढ़ियों के जाने से बहुत से जो मेरे को नापसंद करते हैं वो लोग यार बोला मैं तो सीतामढ़ है। और एक दफे ये आरोप मेरे को ऐसे आदमी ने लगाया, ऐसे मुख सुने कि मैं आप कल्पना क्यों नहीं कर सकते। दिगंबर सीतांबर का शिखर जी का बहुत बड़ा झगड़ा था, अब मेरे दिमाग में आ रही इसलिए मैं भूल रहा हूं, इतिहास सुरक्षित रहा इसके लिए परमात्मा। हालांकि इस वक्त उतनी इष्ट नहीं है वो बात, तो उन्होंने 2 लाख जैनी जाकर के और दिल्ली में जाकर के वो करें हड़ताल। मैंने उस वक्त ऐसा चल रहा था कि लोग जाते थे दिल्ली में तो हड़ताल करते थे अपनी बात मनवाने के लिए, तो उसके लिए सारी समाज का आह्वान किया था साहू अशोक जैन ने। अपने युवा फेडरेशन की तरफ से 4 बसें भर के गई थी उस आंदोलन में, लेकिन मैं नहीं गया था। तो साहू अशोक जैन ने मुझे उलाना दिया कि साहब आपकी गैरहाजिरी लग गई, सारा समाज से 2 लाख आदमी दिल्ली आए और आप नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा आपने बुलाया था, आप मुझे बुलाते और मैं नहीं आता तब आप मेरे को ये उलाना दे सकते थे। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, हमने सारे देश को बुलाया, सब अखबारों में दिया है? तो मैंने कहा आप ये चाहते हो कि जैसा सारा देश को आपने निमंत्रण दिया वैसे निमंत्रण पर मैं आता क्या? बोले हमें कैसे पता चलेगा मोक्ष लोग शामिल हैं, आप आते तो पता चलता। वो तो आप कह रहे हमारे युवा फेडरेशन के हैं, अब भी कौन है नहीं है उन्हें कौन जानता, ये तर्क आया सामने, बहुत मरम की बात है। आप होते तो जानते, फिर ये भी मानते कि इतने लोग जनता में भी मान लो हैं, 100, 200, 500, 1000 जितने भी आदमी मोक्षु लोग हैं, अब तो मोक्षों की गिनती हुई नहीं कि मोक्षु लोग शामिल नहीं हुए। तो मैं कहा आप क्या चाहते थे कि ऐसे ही मैं आता और नीचे भीड़ में खड़ा रहता तो हाजिरी हो जाती मोक्षों की। जब मैं आपके बगल में स्टेज पर बैठता तो वो हाजिरी होती, समझना है ना, समझना बहुत गहरी बात है। और आपने वैसा मुझे बुलाया नहीं था, ख्याल में है ना, इसलिए मैं नहीं आया। तो उनने जो बात कही वो बता रहा हूं मैं आपको। अब जो असली बात सुनने की है कि आपके बहुत बड़े व्यक्ति ने नाम बसंत भाई ने एक कहा था कि वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो? तो उन्होंने कहा वे सीतांबरों में जाते हैं प्रवचन करने, देश विदेश में, बंबई में, परिसर में है ना, तो वो यहां कैसे आते? दिगंबरों सीतांबरों के विरुद्ध जो दिगंबरों का जुलूस था उसमें वो यहां कैसे आएंगे? इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया होगा। माने मैं उस सीतांबरों के यहां परिसर में जाता हूं तो जैन अभी मोक्षु समाज का अपने को बहुत बड़ा नेता मानने वाले लोग ने भरी सभा में, हालांकि अभी जो अच्छा नहीं है ये कहना, लेकिन वो इतिहास है जो साहू अशोक जी ने मेरे से कहा, तो उनने कहा था कि वो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कि मैं सितंबरों के प्रचन यहां प्रचन करने जाता हूं तो मैं सितंबर हो गया, आपको भरोसा है कि मैं दिगंबर नहीं रहा? कि दिगंबरों के साथ आप इतना वो आंदोलन करते तो मैं अपने को दिगंबर नहीं मानता, मैं सबसे पहले दिगंबर हूं आप समझे ना। और उसके बाद जैन हूं, मैं दिगंबर जैन हूं, लेकिन पहले दिगंबर हूं और बाद में जैन हूं। जब जैन अजैन का झगड़ा होगा तो मैं जैनों के साथ खड़ा रहूंगा, उसमें श्वेतांबर दिगंबर सब होंगे। और जब दिगंबर श्वेतांबरों का होगा तो मैं दिगंबरों के साथ सबसे आगे खड़ा रहूंगा। यानी इतना बड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्हें नहीं बुलाया जाए तो मैं मुमुक्षुओं का प्रतिनिधि यहां कहलाऊं समाज में, अद्वितीय। इतनी बड़ी राजनीति की बात हुई, मैंने कितने स्वार्थ में कैसे आज अमृतचंद्र भी ऐसे ही हो गया कि अमृतचंद्र को जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त थी तो किसी ने कि अमृतचंद्र तो देखो उनकी गाथा में श्वेतांबरों को खंडन करने वाली गाथाएं नहीं है, आप समझे ना। वही वही गाथाएं क्यों नहीं है और सब क्यों है? ठीक है, अमृतचंद्र इतने महान आचार्य थे कि वो बात चली नहीं, कैसे आप साहू जी ने भी समझा, अब मेरी समझ में सब आ गया और अब मैं कभी इस बात को भूलूंगा नहीं। उसके बाद जितनी भी मीटिंगें हुई पूरी दिगंबर जैन समाज की, उसमें सबसे आगे बुलाकर मुझे बगल में साहू अशोक कुमार जी ने बैठाया। कहां क्या हो सकता है जब आज के युग में एक आचार्य ने ये कहा कि अमृतचंद्र काष्ठा संगी थे, अमृतचंद्र श्वेतांबरों को नहीं मान, श्वेतांबरों का विरोध उन्हें इष्ट नहीं था, क्यों वो क्यों उनको क्या स्वार्थ था? वो भी ऐसा ही है इतिहास, उसका भी नाम मैं बता सकता हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। बता दूंगा दो चार दस लोगों को है? और वे जब इतिहास का समय आएगा उनके लिए तो उनकी जिम्मेवारी है कि वे उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी मैं ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, कल में है ना। ये कांजी स्वामी अमृतचंद्राचार्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो कांजी स्वामी का महत्व कम करने के लिए अमृतचंद की जड़ काटो। और इसीलिए उनने जयसेनाचार्य की जो टीका है समय सार की वो लिखी उनके गुरु ने, और अब वो छापी, आप समझ में आई ना, कि जैसे हम जैसे नाचार्य का प्रचार करेंगे तो वो उसके लिए मैंने इसमें जैसे नाचार्य की कबूत हिस्सा जोड़ा था। हम जैसे नाचार्य को नहीं मानते हैं और बहुत तर्क दिए थे कि गुरुदेव ने जैसे नाचार्य की टीका में 320 गाथा के बाद जो प्रकरण आता है उसको तो वे अमृतचंद से भी ज्यादा महत्व देते हैं, समझ गए आप? 320 का था, बंध न मोक्ष करे ही, ये आत्मा न बंध मोक्ष का करता नहीं है, वो तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो गाथा आती है। अभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि उसको कुछ इतिहास का पता ही नहीं है उसको, लेकिन क्या करूं, रिकॉर्ड तो रह जाएगा है? इसलिए मैंने ये बात बताई कि भई ये जैसे नाचार्य का नहीं, अमृतचंद्र को नहीं है, लेकिन वो इतनी सरल हैं कि उनका उनके टीका लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ज्यादा टिप्पणी लिखें, उसका अर्थ लिख दिया वही पतला, जैसे उन्होंने लिखा ना कि जो ये गाथा है ना बोलो कुन कुन शतक की, कि जो नारियों को बोझ करते ऐसा करते ऐसा करते, वे श्रवण नहीं त्रियंश हैं, हैं तीन चार कथाएं हैं, किसी को याद? बोलो जोर से बोलो, अरे याद है तो हैं? नहीं है, सैकड़ों लोगों ने याद किए थे उस वक्त कौन कौन सा था, क्यों नहीं जो राग करते नारियों से, ऐसा है ना। खैर रब तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो तो उनकी टीका क्यों नहीं लिखी किसी ने, उस पर आपने विस्तार से कुछ क्यों नहीं लिखा, कुंदकुन से तक अनुशीलन में भी क्यों नहीं लिखा आप कह सकते हो। तो हमने सुगम सुगम में तक इतनी सरल है कि नारियों के बीच में ऐसा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाने के नाम पर, दीक्षा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और उन्हीं उन्हीं विसंगति में रहते हैं, विश्रमण नहीं है, त्रियंच हैं। अब आप समझे ना, तो ये इसका सीधा सच्चा अर्थ है। इस पर क्या लिखें ज्यादा, तो अमृत चंद्र ने तो कि भाई मेरे अमृत चंद्र इसकी टीका लिखे, ऐसी ये गाथाएं नहीं है। तर्क समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि दया सबसे बड़ा धर्म है, और तब तक घट में प्राण तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, इसका अर्थ हम क्या लिखें। हम तो इसका लिखें कि दया भी आत्मा में उत्पन्न होने वाला, दूसरे के दुख को देखकर जो आत्मा में दुख उत्पन्न होता उसका नाम है। ऐसा ना, माना इसकी अमृत चंद्र कहते हैं मेरे, इसलिए नहीं लिखी, उसमें साफ तो लिखा है कि जो वस्त्र पहने ऐसा माने, ऐसा माने अपने को जैन साधु माने, वो जैन साधु नहीं, ऐसा लिखे गाथाओं में क्लियर लिखा है। अब आएंगे अपन जब पढ़ेंगे ना, आएंगे उसमें है, बहुत आगे आएंगे, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। करो नहीं तो फिर निकाल के स्वाध्याय कर लेना, देख लेना। मैंने इसमें दी है वो सब बहना, माने वो जो जयसेन की गाथाएं हैं वो भी इसमें हैं, तो वो पहले वाले प्रजनसार में नहीं है। अब क्या अंतर है लोग पूछते हैं ना, तो अब मैं क्या बताऊं क्या अंतर है, कि तुम स्वाध्याय करो और तुम निकालो कि क्या अंतर है। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, स्वाध्याय करने वाले की ड्यूटी है कि वो उस अंतर को गहराई से समझे। तो एक बात मैंने पाई समय सार में भी और प्रजन सार में भी, कि वो गाथाएं यदि बिल्कुल हटा दो तो भी क्रम में कोई भंग नहीं आता, ऐसा नहीं लगता कि यहां कुछ गाथाएं कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं लगता। जैसे मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, और इस प्रवचन में से जो मैंने आपको ये कहानियां सुनाई हैं ये अंश बिल्कुल निकाल दो और फिर तो बाकी कुछ कमी नहीं लगेगी, कुछ छोटा है ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये तो आपको एक्स्ट्रा बताया है ना, समझ गए ना, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है तो वो कमी नहीं। क्या क्या निकाला है वो जो गाथा बताया, पढ़ो पढ़ो चलो अच्छी तरह से सुनो भी गाथा है। ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, मतलब मेरे कहने का, अब इसमें ऐसे करने को टीका क्या टीका करें, कौन सा शब्द का अर्थ नहीं आता जी किसी की समझ में, तो इसलिए अष्टपावण पर किसी समर्थाचार्य ने टीका नहीं लिखी तो इस कारण नहीं लिखी। संस्कृत में मतलब लिखी है ना, छठ पावण पर किसने लिखी, बोलो नाम बोलो, सुश्रुत सागर भट्टारक सुश्रुत सागर सूरी, एक भट्टारक ने लिखी है। और वो भट्टारक जी का परिचय बताऊं मैं साथ में थोड़ा है? उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये तेरा पंथी है ना, समझ गया ना, इनको जूता होता जूता, उसको भ्रष्टा में लपेट के उस जूते से इनकी पिटाई करना चाहिए। उसी टीका में, उसी सतपाहुर की टीका में। तुम लोगों किसी को पता नहीं था, नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में ये सब लिखा है, उसमें दिया है, वो संस्कृत के शब्द लिखे हैं कि जिन्हें को इनको ऐसा करके और इनको पीटना चाहिए, ये वो शब्द भी उसमें लिखे हैं। मुझे तो वो पेज नंबर और कहा कैसी भाषा, कहा यहां ऐसी टिप्पणी में ऐसे लिखा, मुझे वो भी याद है। अब इसलिए फिर वो टीका ज्यादा चली नहीं, कौन ऐसी टीका कहां से कैसे चला है। और वो कम से कम 6 लैंड की उपाधियां लगी हैं उनके साथ में, उसमें एक कलिकाल सर्वज्ञ भी है, वे कलिकाल के सर्वज्ञ थे। और टोडरमल जी भी गोदिका थे, और एक उम्र यहां जोधराज गोदिका थे, और उनके पुत्र थे, क्या नाम था, अमरचंद गोदिका। वे गोदिका थे, भैंसा भी थे, भौंसा भौंसा गोत्र होता है ना, बड़े जाता भी एक ही गोत्र के नाम है, अमरा भौंसा बोलते थे उन्हें ये सब लोग, अमरा भौंसा माने विरोधी लोग, उनको विद्वान थे, बहुत अच्छे, उनने सम्यक कौमुदी ऐसी किताबें लिखी हैं जोधराज गोदिका ने, मतलब पंडित थे, विद्वान थे। तो ये सांगानेर में जो तो 2.5 पेड़ी का मंदिर है ना, वो उनका बनवाया हुआ है, सबसे पहला 13 पंथियों का मंदिर, क्योंकि वहां आमेर के एक नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे, और उनका चौमासा सांगानेर में हुआ था, जयपुर तो था ही नहीं, अजमेर के बाद सांगानेर था, और सांगानेर बहुत विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था, उसमें आता था कि कौन का पंडित सांगानेर, ऐसा दोहा सर शेठ हुकुमचंद जी बोला करते थे कि सांगानेर के पंडित प्रसिद्ध हैं, है ना। तो वहां पर वे भट्टारक जी प्रवचन करते थे ये मंदिर में, तो वो बहुत बार बार प्रश्न करते थे, तो ये लिखा है कि वो अमरा भौंसा, और वो जाके बहुत प्रश्न बोलता था, और लोगों ने बहुत रोका, वो माना नहीं तो उनको धक्का मार के, और वो जूते का प्रयोग करके और मार के वहां से निकाल दिया था मंदिर से, उन भट्टारक जी के ऑर्डर से, उनके सामने भरी सभा में से, वो भी गोदिका थे। तो उनने उनके साथ 13 आदमी मिले, उनकी एक पार्टी बन गई, और उनने अपना नाम 13 पंथी रख लिया, ऐसा वो विरोधी लोग कहते हैं। और उनने वो 2.5 पीढ़ी का मंदिर बनाया, और फिर भी उसमें प्रवचन करने लगे, और वहां वो 13 पंथियों के मंदिर की शुरुआत हो गई। 13 पंथ का आचार्य कैसा हुआ कि ये लोग 13 चीजें नहीं मानते हैं, तो उन्हें क्या क्षेत्रपाल नहीं मानते, परमावती नहीं मानते, तो वो सब लिखी ने राधा अन्न मंदिर में नहीं चढ़ाते, समझ में आएगा क्या हुआ लिखा, राधा अन्न मंदिर में नहीं चढ़ाते। ये लोग चावल बनाते थे, भात खिचड़ी ये सब मंदिर में बना के ले जाते थे, भगवान कच्चा खाएंगे, ये राधा राधा हमें समझ गया ना, राधा माने पकाया हुआ, जो अनाज है चावल मावल सब ये मंदिर में वे लोग चढ़ाते थे, और ये 13 पंथी लोग नहीं चढ़ाते थे, तो उन्होंने लगा कि ये 13 बातें नहीं मानते, एक उसमें वो राधा अन्न भी है कि राधा अन्न मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं, ये करते हैं ये करते हैं, ऐसे 13 बातें नहीं मानते हैं, 13 आदमी है इसलिए 13 पंथी है, ऐसा लिखा। और फिर अपने 13 पंथी मैंने उसके जवाब में क्या लिखा कि हे दिन 13 पंथ 13 है, नहीं है ऐसा, ये लोग आरोप लगाते कि हम 13 हैं इसलिए 13 हैं, कि हमने 13 बातें नहीं मानते से नहीं है, तो हम क्यों फिर हम 13 पंथी क्यों हैं। तो वो तो ये कहते थे हमने तो अपना नाम 13 पंथी रखा नहीं, इन्होंने कहा तेरा पंथ तू संभाल, क्या निकल जाए यहां से, तेरा पंथ तू संभाल, तेरा रास्ता तू पकड़, जो तुम्हें करना हो जो करो, उसका नाम है। तो उन्हें वे सब लोग तेरा पंथी, ये तो उनको नाम दिया हुआ नाम है जबरदस्ती का। अब अपन को कांजी पंथी तो नहीं कहते अपने को, और सामने वाले बनो कांजी पंथी, कांजी पंथी। और इधर है ना सहारनपुर में, सहारनपुर में लोग कांजिस्ट बोलते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट होते हैं ना, ऐसे कांजी स्वामी के भक्तों को कांजिस्ट बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले पंच कल्याणक में वहां गया था, और मैं वहां बाजार में से निकल के जा रहा था, तो मैंने कहा भाई वो मेला की जगह कहाँ है जहां पंच कल्याणक हो रहा है, तो एकदम एक मुसलमान बोला वो कांजिस्टों का, मैं समझ नहीं कि ये क्या कह रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि ये क्या बोलता था, बोले यहां अपन लोगों को ये कांजिस्ट कहते हैं, अभी भी कहते हैं, आज भी जाओ सहारनपुर में जाके तुम पता लगाना कि कांजिस्ट है। ऐसे जबरदस्ती के नाम दे देते हैं लोग, ऐसे ही तेरा पंथ। तो उन्होंने कहा कि हे दिनेन्द्र भगवान, तेरा पंथ तेरा है, समझे ना, ये मेरा जो पंथ है वो जो तेरा पंथ नाम का जो पंथ है वो तो तेरा माने भगवान तेरा है, और हम और किसी का नहीं है। जगत में और अनेक पंथ हैं, और ये तेरा पंथ सिर्फ तेरा है और किसी का नहीं है, ऐसा जवाब उस वक्त दिए। बहुत छंद लिखे गए। अब उस काल में कि पूरा जैन साहित्य का आलोड़न करो, और जो भट्टारक का साहित्य और भट्टारकों के विरोध में लिखा गया साहित्य, उनके प्रश्नोत्तरों के रूप में लिखा गया साहित्य, जो तो चर्चाएं होती थी, उस साहित्य का भी बहुत बड़ा है। उसमें भी एक पीएचडी हो सकती है, एक नहीं कई पीएचडी हो सकती है। उसको भी गहराई से यदि आलोड़न करें तो उसमें बहुत पीएचडी हो सकती है। क्या हो गया समय? तो भाई तो ये गाथा जो है ना, इसमें कल कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें अमरास के ये भगवान तुम्हें नमस्कार करते हैं, उन सिद्ध के श्रद्धालुओं के सर्व कष्ट विनष्ट हों, इस उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जो उन सिद्धों की श्रद्धा करेंगे, कि जिन सिद्धों को असुरेंद्र सुरेंद्र नमस्कार करते हैं, और जो सब में वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ तो समझते ही हो, वरिष्ठ माने होते ना कनिष्ठ वरिष्ठ, तुम्हारा तो पूर्व उपाध्याय के नाम है ना, ऐसे कनिष्ठ वरिष्ठ, तो वरिष्ठ जो वरिष्ठ हैं और जो इनको नमस्कार करते हैं, इनको इष्ट हैं, उन सिद्धों को नमस्कार करके, और जो करेगा वो सारे दुखों का नाश करेगा। तो इतना सा ही अर्थ है इसका। अब अपन कल 19वीं 20वीं गाथा चलाएंगे।